का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं शिवानी जी की लिखी कहानी गैंडा का तीसरा भाग। इसके प्रथम दो भागों में आपने सुना सुपर्णा मेजर जनरल रोहिताश्व दत्ता की पत्नी है। राज मेहरा सुपर्णा के बचपन की सहेली है और आजकल सुपर्णा के घर पर ही रह रही है। रोहिताश्व दत्ता और राज मेहरा के बीच की नजदीकियों के चर्चे लोगों में हो रहे हैं और ऐसी बातें सुपर्णा को काफी असहज बना रही हैं। सुपर्णा याद कर रही है कि कैसे कॉलेज छूटने के काफी सालों बाद एक दिन अचानक लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सुपर्णा और राज की अनायास ही मुलाकात हुई। राज मेहरा के पति वेद और सुपर्णा के पति रोहिताश्व दत्ता की अच्छी दोस्ती हो गई है और दोनों सुपर्णा के परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। अब सुनते हैं आगे। राज और वेद दोनों ही उनके परिवार के अभिन्न अंग बन गए थे। एक साथ उठना, बैठना, घूमना, पिकनिक मनाना, सिनेमा देखना। फिर रविवार को सुपर्णा उन्हें बड़े आग्रह से ताश की बैठक के लिए रात रात भर रोके रखती। सखी के आने से सुपर्णा के नीरस जीवन में वैचित्र का वह अस्वाभाविक झोंका पहले पहल जितना मीठा लगा था, अब उसी की एक रस्ता उसे उबाने लगी। कभी कभी वह अपने अतीत के निसंग विस्मृत एकांत के लिए तरसने लगे। उसकी गृहस्थी की शांत झील की स्थिर जलराशि में राज ने जैसे एक ढेला मारकर उसे अशांत अगणित तरंगों से भर दिया था। पहले पहले रोहित को भी उनका प्रत्येक रविवार को निमंत्रित किया जाना अखरा था, किंतु चतुरा व्यवहार पटु राज कभी खाली हाथ नहीं आती थी। रोहित की प्रत्येक दुर्बलता को तो वह जैसे डायरी में नोट करके घर ले जाती थी। कभी क्वालिटी के आकर्षक डिब्बों में पैक्ड रोस्ट मुर्ग, कभी प्रॉन और फिर ससुर के विदेशी सेलर से प्रचुर मात्रा में लाई गई छीण कटी की बोतलों की क्या उसके पास कोई कमी थी। सुपर्णा के दोनों बच्चे तो राज आंटी पर वैसे ही जान छिड़कते थे। उनके नन्हे हृदयों को वह एक से एक दामी उपहार देकर बहुत पहले ही विजित कर चुकी थी। यही नहीं, सुपर्णा के सास ससुर जब भी पुत्र से मिलने आते, राज उन्हें भी अपने उदार उत्कोच से कंठ तक भर देती। वो एक प्रकार से कलकत्ता की ही लड़की थी, क्योंकि वर्षों पूर्व उसके पूर्वज पंजाब से आकर कलकत्ता ही में बस गए थे। इसी से त्रुटिहीन बांग्ला उच्चारण ही नहीं, बंगाल के प्रत्येक व्यंजन की रेसिपी में उसकी पाक कला अमृत टपका देती थी। घंट, शुक्तो, डालना और फ्राई बागदी चिंगड़ी से लेकर झाल माछ की साकार व्यंजना वह स्वच्छ नैपकिन में ढांप कर वृद्ध युगल की जोड़ी के खाने की मेज पर सजा जाती। आहा, की लोक की भे तुम्हार बांधु बुआउमा, सास कहती, जेमोन चेहरा तेमोन गुण। तुम्हारी सखी कैसी लक्ष्मी है बहू, जैसा ही रूप वैसा ही गुण। किंतु इसी बीच सुपर्णा ने देख लिया था कि पति के नथुने केवल सुव्यंजनों की गंध पाकर ही ऐसे नहीं फड़क रहे, उन्हें नारी देह गंध ने भी व्याकुल कर दिया। संसार की मूर्ख नारी भी आदर्शी सौत की देह गंध को नर भक्षिणी शेरनी की ही भांति बड़ी दूर से सूंघ लेती है। फिर बेहया राज तो जीती जागती सौत किसी धृष्टता से एक दिन उसका सर्वस्व हरण करने उसके गृह की स्थायी सदस्या बनकर वहां रहने आ गई थी। जिस दिन वह होटल से सीधी अपने गैंडे के तबादले का समाचार देने आई तो सुपर्णा रोहित के साथ चाय पी रही थी। हे फोक्स, वेद की बदली हो गई है, कहां? स्वर के आनंद को सुपर्णा रोक ही नहीं पाई थी। दिल्ली? अरे ला पहले चाय पिला सु, आज तो दो लंब तड़ंग विदेशी अतिथियों को घुमाते घुमाते जान ही निकल गई। बेली गारद इमाम बाड़ा फिर कहने लगे चिकन के कुर्ते खरीदेंगे। एक बार तो जी में आया कह दूं हमारे यहाँ ऊँटों के नाप के कुर्ते नहीं बनते। फिर सोचा लंगूर खुद ही जाकर देख लें किस दुकान में उस ताड़ के पेड़ की नाप का कुर्ता मिल सकता है, भला हार कर ऑर्डर देकर आए। कब जा रही हो दिल्ली? सुपर्णा के स्वर का कुतूहल उसे थमाए जा रहे चाय के प्याले के साथ छलक गया। हे बटरफिंगर्स, मैं ऐसे किसी अतिथि की चाय छलका दूं तो नौकरी चली जाए, राज ने हंसकर रुमाल से हाथ पर छलकी चाय पोंछी। अरे अब तुझे नौकरी की क्या चिंता, सुपर्णा ने हंसने की चेष्टा कर भीतर सशंकित दृष्टि से उसे देखा, जैसे वो जान गई थी कि शत्रु पक्ष से एक न एक हथगोला अवश्य फेंका जाएगा। हटा यार, हम नहीं जा रहे दिल्ली, वेद भी रिजाइन कर अफ्रीका लौट जाएगा। और तू? सुपर्णा का चेहरा उत्तर की आशंका से पहले ही फक पड़ गया था। हमने वेद से कह दिया है कि हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। कहने लगा कहाँ रहोगी, तो मैंने कहा क्यों, सूखे रहते हो और मैं कहाँ रहूँगी। यू आर मोस्ट वेलकम राज, रोहित ने हंस कर उसकी ओर पकौड़ियों की प्लेट बढ़ा दी। सुपर्णा ने आहत विवश दृष्टि से पति की ओर देखा, फिर अपनी कठोर दृष्टि राज के चेहरे पर निबद्ध कर दी। तू मूर्ख है राज, बेचारा वेद, इधर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हाउ कैन यू लीव हिम। अरे चिंता मत कर, राज बटुआ उठाकर खड़ी हो गई, मेरे गैंडे का चमड़ा भी निखालिस गैंडे का है। हाँ तुझे कोई आपत्ति हो तो आई कैन मेक सम अदर अरेंजमेंट्स, होटल वाले ही मुझे सिर आंखों पर रख लेंगे, वहां मेरी स्थिति अब इतनी मजबूत है सू कि अपना मुंह मांगा दाम मांग सकती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, फ्रेंच, सुहाली, भाषा जानने वाली मुझ जैसी लिंग्विस्ट रिसेप्शनिस्ट कहाँ जुटेगी उन्हें। उसकी दम्भी मुस्कान से उसका पूरा चेहरा दमक रहा था। और मुझे कमरा भी नहीं चाहिए डार्लिंग, उसने फिर बड़े दुलार से सखी का स्कंध स्पर्श किया। बोली, बच्चों की नर्सरी में ही मेरा पलंग डाल देना, तू पार्टी में जाएगी और मैं बेबी सिटिंग करूंगी। कैसी बेबी सिटिंग की थी निर्लज्ज राज ने, और फिर उसका गैंडा ही उसके आकर्षक देशी विदेशी बिल्ले लगे सूटकेसों को पहुंचाने स्वयं सुपर्णा के बंगले में आ गया था। सामान रखकर जाने ही लगा था कि सुपर्णा ने उसे रोक लिया। सौभाग्य से उस दिन वह अपने बंगले में अकेली थी, सास ससुर कलकत्ता चले गए थे, बच्चे स्कूल। राज अपने होटल में कुछ अतिथियों को चिन्हट की क्रॉकरी दिलवाने चली गई थी और रोहित परेड ग्राउंड की ओर निकल गया था। ठहरो वेद, सक पका कर वह टिटका। कहिए, उसने हंसकर कहा, किंतु उसका विनम्र स्मित सुपर्णा के कठोर चेहरे को देखते ही फिर उसके शुष्क अधरों में सिमट गए। सुपर्णा बोली, राज तो मूर्ख थी ही, पर तुम भी इतनी बड़ी मूर्खता करोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। छी छी, उस दो कौड़ी की नौकरी के लिए वो तुम्हें किस दुस्साहस से छोड़ रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा वेद, घर जाकर समझाओ और साथ ले जाओ उसको। फिर जो हुआ उसके लिए सुपर्णा प्रस्तुत नहीं थी। डायनामाइट की किसी अदृश्य सुलगी बत्ती ने ही जैसे पलक झपकते गैंडे की इस विराट चट्टान सी देह को भरभरा कर भूमिसात कर दिया। पहले उसके होंठ कांपे, फिर आकारहीन चिबुक, फिर परस्पर जुड़ी अनाकर्षक घनी भौंएं, और फिर वह बदनुमा चेहरा रुदन की सहस्त्र विकृत झुर्रियों में एकदम ही सिकुड़ गया। वहीं कुर्सी पर फत से गिरकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुपर्णा घबरा गई, किसी वयस्क पुरुष को ऐसे फूट फूट कर रोते वह जीवन में पहली बार देख रही। अभी बच्चे स्कूल से आते होंगे, खानसामा भी आ जाएगा, वैसे भी सागर पेथे से सब नौकरों के आने का वक्त हो रहा था, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अब तक यत्न से छिपाई गई उसके जीवन की वह उघड़ी सीवन निर्मम निर्लज्जता से उसके अंग उघाड़ कर रख देगी। वेद, आई एम रियली सॉरी, सुपर्णा का कोमल द्रवित चित्त सहानुभूति के गहर से अवरुद्ध हो उठा। वेद प्लीज, सुपर्णा ने अपने सुकोमल हाथों से गैंडे के चेहरे से उसके दोनों लोमश हाथ हटाने की चेष्टा की। जीवन में पहली बार नारी की सहज निष्कपट सहानुभूति का अपूर्व शीतल स्पर्श पाकर उसके यायावार के आंखों आंसू आंखों में ही थमक गए। उन गोरे हाथों की लंबी उंगलियों को थामकर वह रुंधे गले से कहने लगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सुपर्णा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अरे इसी से तो कह रही हूँ, उसको साथ ले जाओ वेद। नारी कभी कायर का प्रेम स्वीकार नहीं करती। उसके जीवन में पति के लाड़ दुलार का जितना महत्व है, उसके पैर की ठोकर का भी उतना ही महत्व है वेद। केवल मीठा खाने से किसे आनंद आ सकता है। ठीक उसी समय आंधी के झोंके सी ही मदिर सुगंध की लपटें छोड़ती राज पर्दा खोलकर हंसती उन दोनों के सम्मुख खड़ी हो गई। वेद के खुरदुरे कपोलों पर बहे आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। उसके काले मजबूत हाथों की पकड़ में सुपर्णा के दोनों हाथ अब तक बंदी थे। हे आर यू मेकिंग लव? और फिर पति के वेदना विधुर चेहरे को देख उसने संदिग्ध दृष्टि से सुपर्णा को देखा। उसकी अनुपस्थिति में वह उसे कैसा पाठ पढ़ा रही थी, राज समझ गई। बोझिल वातावरण असह्य हो उठा। इससे पहले ही सुपर्णा के दोनों बच्चे स्कूल से आकर उससे लिपट गए। राज आंटी, अब आप हमारे साथ यहीं रहेंगी ना, हमारे कमरे में? यस स्वीटहार्ट, एकदम तुम्हारे कमरे में। बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शन में राज के व्यवहार में कभी भी बनावट नहीं थी। सू के दोनों बच्चों पर उसका प्रेम जितना ही अकपट था उतना ही उदार। देखो आज मैं तुम्हारे लिए होटल से क्या क्या लाई हूँ। रंगीन रिबन बंधा आकर्षक डिब्बा उन्हें थमाकर वह सुपर्णा की ओर मुड़ी। डोंट वेट फॉर मी सू, आज मेरे गेंडे की ये लखनऊ में आखिरी सांझ है, उसकी लास्ट शामे अवध। इसी से मैं आज केवल अपने पति की ही रिसेप्शनिस्ट रहूंगी। यही मैं अपने मैनेजर से भी कह के आई हूँ। चलो वेद। और फिर वह एक प्रकार से अपने गेंडे को खींच कर ही वहां से ले गई। कुछ दिनों तक राज का शिष्ट शांत अस्वाभाविक रूप देखकर सुपर्णा आश्चर्यचकित रह गई थी। तब क्या वह अपने सौम्य आचरण से धीरे धीरे उसका विश्वास जीत रही थी? कभी कभी वह होटल से ही फोन कर देती, मैं आज घर नहीं आऊंगी सू, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। जब लौटती तब बच्चों के साथ ही खेलती रहती या अपने कमरे में कोई जासूसी उपन्यास लेकर लेट जाती। तब क्या वेद के साथ किए अपने दुर्व्यवहार के पश्चाताप ने ही उसका कायाकल्प कर दिया था, या वह उसके गिरगिटी कलेवर की बहुरूपिया प्रवंचना मात्र थी? फिर एक दिन ब्रिगेडियर धर की मुखरा गॉसिपी पत्नी धीरा धर ही उसे आकर वह समाचार दे गई। बोली, पहले पहल सोचा तुमसे ना कहूं, पर फिर सोचा पद में तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, उम्र में तो मैं ही बड़ी हूँ। और फिर बंगाली, जानबूझ कर तो किसी बंगाली गृहिणी का अनिष्ट होते नहीं देख सकती ना। सारी छावनी में तुम्हारी इस बेहया सहेली की बातें हो रही हैं, सब इस पे थूक रहे हैं, और एक तुम हो कि जानबूझ कर भी नागिन को गले में लगाए निश्चिंत पड़ी हो। तुम्हारे पति के लिए बेशरम ने अपने ही होटल में एक डबल रूम बुक कराकर छोड़ा है। जब भी मौका मिलता है दोनों वहीं मिलते हैं। किसी दिन सुअवसर देखकर तुम्हें फोन करूंगी, फिर तुम दोनों को बड़े मजे से रंगे हाथों पकड़ सकती हो। पर सुपर्णा ने उस हितैषणी के फोन की बिना ही पति की प्रवंचना को घर बैठे ही पकड़ लिया था। उस दिन होटल में राज की रात की ड्यूटी थी। दिन भर वह बच्चों की नर्सरी में जैसे भांग का गोला खाकर पड़ी सोती रही। फिर संध्या को तैयार सुपर्णा से विदा लेने आई तो हंसकर बोली, देख सु, ये सेट कैसा लग रहा है तुझे, है ना कमाल का? कल चौक की एक छोटी सी दुकान से लिया था। काबुल की एक फिल्म तारिका के साथ वहां गार्नेट ढूंढ रही थी कि ये दिख गया, और देख है भी कितना सस्ता, गेस कर। राज के गौर कंठ से चिपके उस जगमगा रहे चोकर और कानों में लटकते वैसे ही नवरत्न के गुंबदों की अनुपम बनावट देख राज की हृदयहीन प्रवंचना को भी सुपर्णा एक पल में भूल गई। नारी सुलभ कुतूहल से उसकी दोनों आंखें चमकने लगीं। कैसा विचित्र हृदय बनाया है विधाता ने नारी का। गहरी से गहरी चोट खाकर भी वह किसी अनुपम आभूषण को ललचाई दृष्टि से देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाती। कितने का है राज? कुल 2000 का है ना लूट, 2.5 मांग रहा था पट्टा, हमने 2 का ही काटा चेक। फिर राज चली गई तो सुपर्णा उठकर बच्चों का कमरा ठीक करने चली आई। लापरवाह राज प्रायः ही उतरी साड़ी ब्लाउज ब्रा कमरे में ही फैलाकर छोड़ जाती थी। उसे अपने सुव्यवस्थित सवरे बंगले की सज्जा में सामान्य से तिनके की उपस्थिति भी सह नहीं होती थी। पिछले 15 दिनों से जब से डॉक्टर बर्वे ने उसे यह सूचना दी थी, उसकी अनुभवी आंखें शिकारी कुत्तों की ही भांति निरंतर राज की गतिविधि का पीछा कर रही थी। एकाएक उसकी मतली, चेहरे का पीलापन, अलस अंगड़ाइयाँ न जाने किस शून्य में विलीन हो गई थी। पीठ से लगा पेट, उत्फुल्ल चेहरा, उज्ज्वल आंखों की स्निग्ध दृष्टि, कहीं भी संभावित मातृत्व का कोई चिन्ह नहीं था। तब क्या जब वह 4-5 दिन के लिए बाहर गई थी तभी वह अपने बोझिल शरीर को भारमुक्त कराई थी? वह नर्सरी में गई तो पूरे कमरे में अभागिनी कपड़ों का बाजार सा लगाकर छोड़ गई थी। एक ओर तकिया पड़ा था, दूसरी ओर साड़ी, जमीन पर ढहे तंबू कनात का पेटीकोट वैसे ही पड़ा था जैसे उसे उतारा गया। झुंझला कर वह अस्त व्यस्त वस्तुएं सहेज रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि मेज पर धरे नए मखमली केस पर पड़ी। शहर के उस प्रतिष्ठित जौहरी की दुकान तो वैसे छोटी मोटी नहीं थी जैसी राज बता रही थी, फिर वो दुकान तो अमीनाबाद में थी, चौक में नहीं। तब क्या उससे झूठ बोल गई थी राज? पर क्यों? फिर अचानक उसके गंभीर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ओह, समझ गई, शायद सोच रही होगी कि मैं भी उस दुकान से ऐसा ही सेट खरीदकर उसकी मौलिक रुचि को म्लान ना कर दूं। कोई भी नारी नहीं चाहती कि उसी किसी साड़ी या उसी का सा गहना किसी अन्य नारी के अंग को महिमान्वित करे। फिर सखी को नीचा दिखाने की प्रेरणा ही उसे उस दिन जौहरी की दुकान पर खींच ले गई। कहिए, नम्र जौहरी उसके सम्मुख खड़ा हो गया। सुपर्णा बोली, आपके यहाँ से मेरी एक परिचिता कल एक नवरत्न का सेट खरीद कर ले गई थी, रिवर्सिबल मीने का है वो सेट, क्या वैसा ही दूसरा सेट होगा आपके पास? दुकानदार बोला, क्या शुभ नाम बताया आपने अपनी सहेली का? राज, राज सचदेवा। जौहरी ने अपना मोटा बही खाता खोला, बोला, जी हाँ, एक जयपुरी नवरत्न का सेट हमारे यहाँ कल बिका तो है, पर उसे किसी राज सचदेवा ने तो नहीं खरीदा, उसे लिया है किन्हीं जनरल दत्ता ने, हाँ, रोहिताश्व दत्ता। वैसा सेट तो अब नहीं है बहन जी, पर आप बयाना दे जाएं तो हम 10 दिन में मंगवा देंगे। किंतु बयाना देने वाली फिर क्या उस धरनी पर खड़ी रह सकी थी? कांच के शोकेस को थामकर उसके कांपते पैर साधे, फिर हवा के झोंके से निकल गई। उफ, इतना बड़ा विश्वासघात और इस निर्लज्ज सौत की ऐसी स्पर्धा! उसी के पति के उपहार के माध्यम से क्या वह उसे ही अंगूठा दिखाने आई थी? सारी रात सुपर्णा जल से निकली मछली की भांति तड़पती रही और फिर गृहस्थी के एकांत का सुअवसर पाते ही चल दी थी उस मस्जिद की ओर, जिसका पता 3 वर्ष पूर्व उसकी नीलम की अंगूठी खोने पर उसकी आया ने बताया था। आया ने बताया था कि आप पीली मस्जिद के ना मौलवी जी के पास जाकर फाल खुलवाइए मेम साहब, दूध का दूध पानी का पानी ना कर दें तो मेरा नाम बशीरन नहीं, एक अंडा कटवा देंगी सरकार तो खून बलबलाते चोर हरामजादे को आपके कदमों में डाल देंगे। तब बशीरन को उसने एक धमक देकर भगा दिया था। मूर्ख अपढ़ औरत, ऐसे पोंगा ज्योतिषियों नजूमियों पर उसका विश्वास नहीं था। किंतु जब विपत्ति की गाज अपनी पूरी भयावनी शक्ति से किसी पर टूटती है तब उसका पढ़ा लिखा विवेक भी अपना तर्क वितर्क भूल बिसर अपढ़ सरल मानव की श्रेणी में उतर जाता है। पता तो एकदम कंठस्थ था, पीली मस्जिद के पीछे नीम तले के मौलवी का पता, आपको इतना सा बच्चा भी बता देगा मैम साहब, बशीरन ने कहा था। फिर पूरा मोहल्ला चिकन का काम करता है, खटियों पर बैठी कढ़ाई करती बीसियों औरतें आपको बड़ी दूर से दिख जाएंगी। चार पांच खटियों पर चिकन के कुर्तों पर झुकी औरतों की भीड़ देखकर वह तेजी से बढ़ गई थी। झुककर पूछा, यहाँ कोई मौलवी साहब रहते हैं? जी हाँ, वो सामने नीम तले जहाँ टाट का पर्दा लगा है ना, वहीं रहते हैं। एक पल को फिर उस अधेड़ औरत की कुर्ती की जाली में घुसी हुई सुई थमक कर रुक गई। लगता है मेम साहब की कोई चीज हो गई है, पाल खुलवाने आई होंगी। उस फुसफुसाहट को सुनती सुपर्णा लटके फटे टाट के पर्दे के बाहर ही दुविधा से खड़ी रह गई। सहसा पर्दे में बीचों बीच बनी बड़ी कौशल से बनी मैजिक आई को उसने बड़े आश्चर्य से देखा। एक छोटा सा बटन काज बनाकर उस छिद्र को बड़ी सुगढ़ता से नन्हे गवाक्ष का रूप दिया गया था। सुपर्णा ने गला खकारा और उसी का आभास पाकर एक बड़ी सी आंख उस गवाक्ष से सट गई। दूसरे ही पल झांकने वाली बाहर आ गई। छींट के जीर्ण सर शलवार कुर्ते में उस कुशौरी का यौवन किसी अबाध्य मुश्के बंधे दस्यु की भांति मुक्त होने को छटपटा रहा था। स्वस्थ उजले दांतों की सहज हंसी से उसका स्वागत कर वह किशोरी बोली, आइए, अब्बा से काम है ना? सहम कर भीगे फर्श से अपनी साड़ी का फॉल बचाती सुपर्णा भीतर गई। कमरे में पैर रखते ही वह ठिठक गई। ऐसा दारिद्र्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। छी छी, कहाँ आ गई वो? ऐसा ही विलक्षण भाग्य वक्ता था तो क्या आज तक अपना भाग्य नहीं जांच पाया? बैठने वाले का गंभीर आदेश सुनकर भी वह खड़ी रह गई। बैठिए। पर बैठती कहाँ, एक टूटे पलंग की झूलती मंजू धरनी का स्पर्श कर रही थी। उसमें बैठने का नहीं, केवल धसने का ही प्रश्न उठ सकता था। दूसरे पलंग पर अनेक खुली पुस्तकों, चुरकटों, कागजों से घिरा स्वयं जो रहस्यमय व्यक्ति बैठा था, उसे देखते ही वह सब कुछ भूल गई। बैठो बेटी। इस बार उसने अपने पलंग के नीचे हाथ डालकर एक जीर्ण मोढ़ा खींचकर बाहर की ओर ठेल दिया। कमरे में सिवाय फटी कथरियों, एल्युमिनियम की धुएं से काली पड़ी पतीलियों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो बोला, क्या कुछ खो गया है? कैसा गुरु गंभीर स्वर था, ठीक जैसे पखावज पर चौताल बज रही हो। सुपर्णा ने असहाय विवश दृष्टि से कोने में खड़ी उस लड़की को देखा। स्पष्ट था कि उसकी उपस्थिति में वह खोई वस्तु का विवरण नहीं देना चाहती थी। हबीबा बेटी, तुम जरा बाहर जाकर अपनी अम्मी के पास बैठो। हबीबा सिर झुकाकर बाहर चली गई। कुछ कीमती चीज खो गई है क्या? उससे कीमती और क्या चीज खो सकती थी, उसने सर झुकाकर कहा। जी हाँ, और फिर अपना ही स्वर अनचिन्हा लगा था। किसी पर शक? जी। उसके बाप का नाम बता सकती हो? जी, गुरुदत्ता मेहरा। एक पल को नीम तले मौलवी ने अपनी कोटर ग्रस्त आंखें बंद की और उन्हीं मुंदी आंखों के सुअवसर का लाभ उठा। सुवर्णा ने उस रहस्यमय चेहरे को पहली बार ठीक से देखा। जीर्ण चिकन के कुर्ते पर झूलती अनेक सिमरनियाँ, तावीज, एक काले डोरे में बंधी अनेक रंगीन गुड़ियों के बीच एक शुष्क काठ का टुकड़ा, उसी में गुथी दत्त खुदनी, गंभीर तेजस्वी चेहरे की आभा चेचक के दागों से मलिन नहीं हो पाई थी। एक स्थूल कलेवर की पुस्तक खोलकर उसके सामने रख मौलवी ने कहा, आंख बंद कर इसमें उंगली रखना और जिस पर शक है उसका चेहरा आंखों में बांधने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह हम अभी हुलिया बता देंगे। पर आंख बंद करने पर भी क्या वह उस चेहरे को कल्पना में खींच पा रही थी? जितनी ही बार वह उसे लाने की चेष्टा करती, उतनी ही बार उससे सटा रोहित का मुस्कुराता चेहरा भी साथ साथ चला आता। फिर बड़े यत्न से उसने उस छवि के घेरे को फोकस में बांधा जो उसे पति का दिया नया सेट पहन ईर्ष्या दग्ध करने उस दिन इठलाती चली आई। उंगली हटा लो बेटी, चौंक कर उसने हाथ खींच लिया। उफ, कैसे कसकर दाबा था उसने, जैसे वह फाल के निर्जीव अक्षर नहीं सौत की सजीव ग्रीवा हो। बेशक तुम्हारी कीमती चीज चोरी गई है, बताने वाले की दोनों आंखें बंद थीं और वह जैसे किसी ट्रांस में झूम रहा था। चोर बाहर का नहीं है, गोरा रंग, छरहरा बदन, बाल मर्दों की काट में छटे हैं, आंखें कंजी होंगी और हंसने पर बंद हो जाती होंगी। चेहरा खूबसूरत होने पर भी कभी कभी निहायत बदनुमा लगने लगता होगा। यह चोर पेशेवर चोर है। बस करिए, सुपर्णा एक प्रकार से चीख उठी थी। उफ, कैसे जान गया ये सब, मुझे मेरी चीज मिलेगी या नहीं। उसके प्रश्न का प्रत्येक शब्द एक कांपती सिसकी बन गया था। मिलेगी, पर लेने वाले को सजा दिए बिना यहां चीज नहीं मिलती। उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। जब कर लोगी तब लेने वाली खून बलबलाती खुद तुम्हारे दरवाजे पर चीज डाल जाएगी। नहीं नहीं, इतनी नीच नहीं थी वो, पर कहने वाला कहे जा रहा था। अब वह ऐसे घुटने टेक कर बैठा बैठा झूमने लगा था जैसे नमाज पढ़ रहा हो। बोला, एक चीज दूंगा, उसे ऐसी जगह में गाड़ कर रख देना जहां वह उसे कम से कम एक बार लांग ले, पर देखना कोई उससे पहले उसे न लांघे, समझी। अगर एक बार लांग गई तो इंशाल्लाह महीना बीतते बीतते तुम अपनी चीज पा जाओगी। मैं ये नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो, वह स्वयं बड़बड़ाती जा रही थी। तब तुम घर जाओ बेटी, वैसी ही दूसरी चीज खरीद कर अपना गम भुला लेना। उन रहस्यमय आंखों में व्यंग था या सहानुभूति, क्या उसने सचमुच ही उसकी खो गई सौभाग्य मणि की झलक देख ली थी। कैसे समझाए उसे, जो दुर्लभ वस्तु उसने खोई है वह फिर दोबारा नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, इस बार संयम की राख में चिंगारी से दबी प्रतिशोध की दहक तीव्र ज्वाला बन लपलपा उठी। आप दे दीजिए, मैं गाड़ दूंगी। फिर केवल 2 रुपये 12 आने चुका उस वारंट को बटुए में डाल वह बाहर चली आई थी। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी कहानी गैंडा का 3रा भाग।